पहले आयत शुरू करते हैं तर्जमे के साथ, तफसीरी तर्जमा, और फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे. अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वकालतिल यहूदु. अब इस वक्त आपकी नज़रें कहाँ होनी चाहिए, पारा कहाँ होना चाहिए, जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं, यानी करीब करें अपने पारों को, प्यार से उसको देखें. और ये जो जुमले बीच में मैं छोटे छोटे बोलती हूँ इन तर्जमों को पूरा करने के लिए, उसको किसी भी तरह अगर आप इंडेक्स पेपर पे लिख के या कुछ भी पारे के साथ लिख लें तो इंशाल्लाह तर्जमा आपको नहीं भूलेगा. वकालतिल यहूदु, और यहूद ने कहा. कालत क्यों आया, कि लफ्ज़ यहूद मुअन्नस है. यहूद कौन थे, वो मुसलमान जिन्होंने यहूदा से नस्बत जोड़कर अपना एक फ़िरका यहूदियत के नाम का बनाया. ये गलती कभी ना खाइएगा कि आप कहें कि यहूद वो थे जिनको अल्लाह ताला ने लफ्ज़ यहूदी दिया, ठीक है, और हैं वही जिनको पिछले हिस्से में हम बनी इसराइल के नाम पे पढ़ते आए. नोट भी करें कि जब अल्लाह ताला ने पीछे तस्कीर की या बनी इसराइल स्कुरु नेमती अल्लती, दो दफ़ा गुजर गया ना, तीसरी दफ़ा अगले सबक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल, ठीक है. अल्लाह ताला ने हमेशा इनको बनी इसराइल कहा, ये नहीं कहा कि या बनी इसराइल की वजह कहा कि या यहूद उस्कुरु नेमती अल्लती. तो यहूद क्या हैं, वो ग्रो जिन्होंने अल्लाह के दिए हुए नाम को पसंद करने की बजाय अपना सेक्टेरियन नेम, फ़िरका वराना नाम बना लिया. क्या कहा, लई सतिन नसारा, नसारा कुछ भी नहीं है. इसको आप उर्दू में यूँ लिख लें कि हम नसारा को कुछ नहीं समझते, दे आर नथिंग, इनको कुछ नहीं आता, सब हमें पता है, ऐसे ही बड़े बने हुए हैं, सब कुछ वही है जो हमारे पास है, बस डिस्प्ले है और कोई बड़ी बात नहीं, बस बड़े लोगों के हाथ में कुरान आ गया, पैसे वालों का खेल है. ये टोन जो अमूमन एक दीनदार दूसरे दीनदार के मुकाम को कम करने के लिए आज की सोसाइटी में भी बोलते हुए दिखते हैं, इसी को यहाँ अल्लाह ताला ने उनके इस अखलाक की बात बता दी कि ये इस किस्म की बातें किताब के बारे में करते हैं. खैर आगे हुआ, क्या कहा, हम नहीं इनको समझते आला शैयन, किसी चीज़ पर, यानी इनके दीन में कुछ है ही नहीं, हम इनको कुछ नहीं समझते, इनके पास कोई दलाइल नहीं है, सारे दलाइल तो हमें मिल गए दीन के नाम पर. यह स्टाइल था. इसी तरह से क्या हुआ, वकालतिन नसारा, जब नसारा को मौका मिला तो उन्होंने कहा, लैसतिल यहूदु, नहीं है यहूद. यहाँ भी देखिए लफ्ज़ काला की जगह कालत है, तो काला मुजक्कर होता है, कोई मर्द कहे उर्दू में आप समझें तो काला कहेंगे, उसे एक मर्द ने कहा, तो जब एक औरत कहे तो फिर क्या होता है, कालत. तो अरबी ज़ुबान का ये हुसन देख लें कि अल्लाह को गलती नहीं लगती, हमें लग जाए तो लग जाए. तो काला की जगह कालत क्यों आया, क्योंकि मुअन्नस के लफ्ज़ आगे. लैसतिल यहूदु, यहूद कुछ भी नहीं, अला शैइन, किसी चीज़ पर, यानी इन दोनों के पास कुछ भी नहीं, यहूद के पास क्या धरा है, कुछ भी तो नहीं. हालांकि वहुम यतलूनल किताब, ये लोग तो किताब पढ़ते पढ़ाते हैं. ये चीज़ जो है ना, ये अल्लाह ताला का कमेंट है, लिख लें बीच में, पहले यहूद का कॉल था, फिर नसारा का कॉल आ गया, और अब दोनों की उन बातों पे अल्लाह ताला कमेंट दे रहे हैं कि देखो देखो ये पढ़े लिखे लोग किस तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहा है, दूसरा पहले पे कीचड़ उछालता है, और इस तरह दीन जो है ये चूँ चूँ का मुरब्बा बना हुआ दिखता है. ऐसे लोगों को अपनी इसलाह करने की ज़रूरत है. खैर फिर क्या हुआ, अगली बात देखिएगा, कज़ालिका क़ालल्लज़ीना. अब यहाँ कौन कह रहा है, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दे रहे हैं कि कज़ालिका, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से मिजाज रहा. किन्होंने कहा, क़ालल्लज़ीना ला यालमून, उन लोगों ने जिनके पास इल्म नहीं था. इसके नीचे लिखे, इससे मुराद मुशरिकीन मक्का हैं. आयतों के टेक्स में रहेंगे, अल्लाह के नबी मदीना में थे, मदीना में ये आयतें नाजिल हो रही हैं, कब हो रही हैं इसको आगे डिस्कस करते हैं. और अल्लाह सुबहान तआला अपने तौर पे इनको बता रहे हैं कि देखो ये लोग जो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, यही बातें तो मक्का वाले करते थे. चलो यहूद नसारा दोनों कम अज़ कम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए दीन की एक सूरत है ना बिगड़े हुए. मुशरिकीन के पास तो है ही कख नहीं, जिसको अपनी ज़ुबान में आप कह लें. ये ऐसी है कि जैसे आज के दौर में क्रिश्चियन एंड ज्यूज कुछ ना कुछ हो बाइबल का नाम तो लेते हैं ना, तौरात और इंजील का जिक्र तो करते हैं, लेकिन आज नाम सिर्फ सोच के लिए बताऊं कि आप कोई और नाम देख लीजिए अपने इर्द गिर्द, तो उनके पास तो कोई इस्लामी किताब ही नहीं. ये अलग बात है कि उनके आलिमों की बनी हुई किताबें कहीं गीता की सूरत में, कहीं वैद की सूरत में, कहीं बर्मा की बातें वो होंगी. तो अल्लाह कहते देखो देखो ये जिनके पास कुछ था वो बिगड़े, वो ही लड़ रहे हैं, तो इनकी क्या बड़ी बात है। ये बातें तो अनपढ़ों ने भी की थी। बात वाजे, यानी स्टाइल है कमेंट का। अब तीनों ने कहा, तीन गिरोह हैं जो इस वक्त अपने हक परस्त होने का दावा कर रहे हैं, ठीक है। यहूद कर रहे हैं, सवाल पैदा होता है क्यों कर रहे थे, उनके इस दावे की बुनियाद क्या थी। कहते थे कि सबसे ज्यादा नबी हमारे पास आए हैं, बस हम हक में। हर बंदा जो बड़े बड़े जुमले बोलता है ना, कुछ नहीं उनको आता, लेकिन वो कहते हैं हम सब करते हैं। आप हमें क्या कहते हैं, हमें सब पता है। आप कहते हैं ट्रेनिंग करो, हम भी ट्रेनिंग करते हैं। कौन करता, मैंने कराई थी, तो मेरा दिल करा कि मैं खामोश ही हो जाऊं इस पे, कि जो जिसकी ट्रेनिंग के लिए मैं दुआ करती हूँ कि ये कुरान सीख सिखा रही है इतनी जौक और शौक से, कोई दिन इनका खाली नहीं जाता, तो इनको थोड़ा सिखा दें हम लोग, ताकि ये अपने काम को खूबसूरती से कर लें। जितनी समझ हमें, हमसे भी अच्छी बातें सिखाने वाले और भी होंगे, तो तलब और तड़प तो हो कि ये और सीखें। लेकिन इसके जवाब में वो कहते हैं नहीं, हम भी अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करते हैं और हम कराते हैं। क्या कराते हैं ज़रा बताएं। तो उसके आगे कुछ नहीं था, बस यही है कि उनको मौका देते हैं, आप भी आए बैठे पढ़े, आप भी कुछ सुनाएं, तो वो तरबियत हो जाती है। तो जिसके पास जितना होता है उतना ही देगा ना बेचारा। तो लिहाजा खुश फहमियों में आकर लोग इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा सवाल है कि नसारा ने क्यों ये दावा किया था कि हम बहुत बड़े हैं, तो उसकी वजह उनके इस तकब्बुर और बड़ाई की क्या थी। कहते थे अल्लाह ने अपना अखलौता बेटा हमें दे दिया, नऊज़ु बिल्लाह, जीसस के नाम पे, तो लिहाजा हम बहुत बड़े। सवाल पैदा होता है कि मुशरिकीने मक्का ने ये क्यों दावा कर दिया, उनके पास क्या था। तो उनके बड़ाई के दावे या तकब्बुर की वजह क्या थी। कहते थे कि खाना काबा की खिदमत करना और उसकी हिफाजत करना और वहाँ हाजियों को पिलाना खिलाना, ये इतनी बड़ी ऑनर है कि हम हक पे हैं। आपने फील किया, हर गिरोह एक छोटे से फ्रैक्शन पे खुश है। आगे आप दो दफ़ा पढ़ेंगे कुरान पाक में, कुल्लु हिजबिन बिमा लदैहिम फरेहून या फरेहीन, दो तरह आता है, कि हर ग्रोह जो उसके पास थोड़ा सा हक है ना, उसी पे फख्र कर रहे हैं। और अला शहीन से मुराद के हक पर नहीं है, इनके दीन की कोई हैसियत नहीं है, या तीसरी बात कि इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, ठीक है। खैर, अल्लाह ताला इन तीनों के दावे के बाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, फल्लाहु याहकुमु बैनहुम, अल्लाह उनके दरमियान फैसले कर देगा। कब करेगा, यौमल कियामती, कियामत के दिन। क्या फैसला होगा, किस मामले में होगा। फरमाया फी मा कानू फी ही यख्तलिफुन, उस मामले में फैसला करेगा जिसमें ये आज इख्तलाफ करते हैं। ये मुकालमा कब पेश आया, सवाल पैदा होता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें नोट कीजिएगा। एक तो उनकी बुनियादी थॉट है, लेकिन इसके बारे में तफसीर में हमें बात मिलती है कि नजरान, जो एक मक्का मदीना के करीब जगह है, वहाँ से एक वफद क्रिश्चियंस का अल्लाह के नबी के पास आया। बहुत कम आप तذکرہ सुनेंगे अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में क्रिश्चियंस का, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ज्यूज थे और मुस्लिम्स थे और मुशरिकीन मक्का थे। फ्यू एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे आगे जाते जाएंगे। तो लिहाजा ये आए और कहने लगे अल्लाह के नबी ज़रा हमें अपना दीन सिखाएं। ये ऐसे ही कि जैसे कोई एक शहर में रहने वाला तो रोज़ ही आता है, कोई दूसरी जगह से आए के थोड़ा सा हमें भी बताएं कि आपकी क्या तालीमात हैं, कोई शॉर्ट कोर्स हमें करा दें, कोई कुछ बता दें। जब वो अल्लाह के नबी के पास आए तो यहूद के उलमा भी आ गए कि ज़रा देखें तो जाके ये करते क्या हैं। याद रखिए, जो दीनदार दूसरे दीनदार की कंसुई करता है, कंसुई से मतलब समझते हैं, जो उसकी जसूसी करता है, उसके अपने दिल में कॉम्प्लेक्स होता है, खोट भी होता है, कॉम्प्लेक्स, जरा देखना क्या हुआ है। फिर बातें ऐसी, फोन खुद नहीं कैसी सुना, क्या हो रहा है, अच्छा कोर्स करी माशाल्लाह बहुत अच्छा, क्या होता है, अच्छा, हाँ ठीक, अच्छा 4 घंटे ठीक। यानी वो एक अंदर ने, जैसे कहना चाहिए ना, जहर की एक छोटी सी चुटकी डाल के फिर 2-4 जुमले आपकी तारीफ के करेंगे, अच्छा, माशाल्लाह, और क्या करते हैं भला वहाँ, अच्छा ग्रुप कर, अच्छा कैसे करते हैं, अच्छा, ये होता है। यानी थोड़ी सी आपको डोज देनी अप्रिसिएशन की और पीठ पे हाथ फेरते फेरते आपसे राज ले लेने, ये स्टाइल यहूद और नसारा का आपको इस महफिल में दिख रहा है। उन्होंने कहा हम भी देखे, पता नहीं अल्लाह के नबी इनके साथ मिलके कोई एग्रीमेंट ही ना कर लें। तो लिहाजा वो भी आ गए। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी की आदत क्या थी कि जब कोई आपके पास आता था ना, तो सिर्फ आप ही नहीं बोलते थे, अगले से पहले भी सुनते थे, आप सुनाए आप क्या करते हैं, आप क्या क्या दीन है, दिस एंड दैट। नसारा ने अपने दीन की कुछ बातें बतानी चाहिए। यहूद और नसारा दोनों आपस में बड़ी चपकलश रखते थे। याद रखिए, आगे भी पढ़ेंगे ये मज़मून बहुत दफ़ा कुरान पाक में आएगा, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तहसबुहुम जमीयन, ओ मुसलमानों तुम इन दोनों गिरोहों को एक समझते हो, हालांकि वक़ुलूबुहुम शत्ता, सूरह हशर की आयत है ये, जबकि इनके दिल फटे हुए हैं। इस पे भी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लीजिए कि यहूद और नसारा की आपस में इतनी लड़ाइयाँ हुई, इनकी हिस्ट्री खोल के देख लें, सलीबी जंगों का नाम आपने सुना होगा, इन दोनों गिरोहों में बहुत फर्क है। हत्ता कि आपको पता है कि क्रिश्चियंस का एक ग्रुप है, तीन बड़े बड़े फिरके हैं, इंशाल्लाह सूरत आले इमरान में जहाँ तस्करा आएगा नाम लिखा दूंगी, सिर्फ इस वक्त रुख को लें कि नसारा के इस वक्त जो बड़े बड़े तीन फिरके हमें दिखते हैं ना, उसमें से एक फिरका यहूद की साजिशों का नतीजा है। मैं बड़े शोर से बात बोलूं अगर आप बात को समझना चाहेंगे, कि जैसे आज हम मुसलमानों के बहुत सारे फिरके जो बने हैं, नाम कुछ भी ले लें सबको पता है, उसके पीछे भी इन्हीं कौमों का हिस्सा है। ये मुसलमानों को आज जिस तरह आपस में तोड़ती हैं, कभी आपने ईरान और इराक के बारे में तसव्वुर भी किया होगा आज से 20-25 साल पहले, कि ये दो मुसलमान भाई मुल्क जिनके बिल्कुल ऐसे कंधे से कंधा जुड़ा हुआ है, ये लड़ेंगे तो कोई खुद तो नहीं लड़ता, पीछे से लड़ाया जाता है। तो क्रिश्चियंस के ग्रुप्स बनने के पीछे दूसरे ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। ये हर वक्त लड़ते रहते थे, इतना ज्यादा करते थे। वजह क्या थी कि यहूद चाहते हैं कि नसारा के लोग हमारे तरीकों पे आ जाएं, वही सेम फिरकावारियत और उसकी कहानी है, और नसारा कुछ और सोचते हैं। इनकी अपनी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट का, आपने नाम सुना होगा। आज की बाइबल के दो हिस्से हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और वो क्या है, तौरात। ज्यूस तौरात को मानते हैं, यानी बाइबल एक बुक है, ज्यूस को आप कहें ना रेफरेंस दें तो वो आपके सामने लाइक जैसे कोई भी बुक, अगर मेरे पास हो, मिसाल है कि यहाँ ये देखिए ये बुक है ना, अब आप मिसाल लें कि ये आपके लिए क्या है, ये बाइबल है। आप ज्यूस के उलमा के पास जब जाते हैं ना कि अपनी किताब से रेफरेंस दिखाएं, अब एक तो ये कि हमारा कुरान पाक है, हम सूरत फातिहा से लेके सूरत नास तक कहीं से भी रेफरेंस दे देंगे, हमारा ईमान है ना। कभी आपने ये तो नहीं किसी मुसलमान से आज तक सुना होगा कि अच्छा जी इसका रेफरेंस सूरह बकरा में क्यों आया है, शुरू की सूरतों में हमें सूरत मैयत साल उनसे दिखाएं, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन यहूद और नसारा का हाल क्या है कि अगर आप सोचें कि ये बाइबल है, और जब यहूदी उलमा लोगों को दीन सिखाते हैं ना, तो वो बाइबल के शुरू के हिस्से का सिखाते हैं। इस सादे कुरान को आप लगा लीजिए, इसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, अहदनामा कदीम और जदीद का लफ्ज़ सुना होगा, और क्रिश्चियंस के जो स्कॉलर्स हैं वो सेम बाइबल का आखिर का हिस्सा लाते हैं। कैसे? उन्होंने तौरात की जो चीज़ें थी उनको कुछ ना कुछ चेंज कर करा के वो उन्होंने उसमें डाला, और क्रिश्चियंस ने इसको डाला। आज पायल अप होने की सूरत में एक ही दिखता है, क्योंकि आपने अक्सर नाम तो सुना ही होगा कि बाइबल का ही लफ्ज़ आता है, कुरान और बाइबल के अलावा कोई तीसरी बुक तो आप नहीं देखते ना। हत्ता कि आप इनकी हिस्ट्री पढ़े, अक्ल गुम हो जाती है कि जो सिनेगॉग का चक्कर है, पहले ये सब जो थे सिनेगॉग्स में इबादत करते थे। बड़ी लंबी कहानी है जो इस वक्त, फिर कहूंगी कि जो इनकी हिस्ट्री का आपको पेपर दिया हुआ उसको जरूर पढ़ें, आप फील करेंगे कि पहले सिनेगॉग्स नहीं थे बल्कि चर्च का लफ्ज आता था शुरू से, लेकिन जब भी आपस में इनके अख्तलाफात हुए तो यहूद को महसूस हुआ कि हमारे अकायद तो लोगों के जहनों से मसख हो रहे हैं, क्रिश्चियनिटी गालिब आ रही है। उस वक्त फिर इन्होंने पहले आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को चर्चिस से रोका, ये सैटरडे और संडे का फ़र्क भी इसी फ़र्क की बुनियाद है, कि नहीं उधर नहीं जाना, ये ना करना, फिर इनको लगा कि हमारा तो कोई फोरम ही नहीं है। नतीजा हुआ कि इन्होंने कानून बनाया अपने दौर में कि जहाँ सात आठ यहूद हों, मिसाल है कि ये इलाका इसको आप जो भी कहें, अगर इधर सात आठ घर यहूद के हैं ना, तो फिर वो एक जगह किराए पे लेके तो उसको सैनिगॉग बना देते थे, मजहबन लाजिम कर दिया गया कि यहाँ सैनिगॉग हो। गोया कि आप कह लें कि इन्होंने खुद छोटे छोटे दर्जे से करके खुद को क्रिश्चियन से अलग कर दिया। नुकसान क्या हुआ उसके बाद से, बस समझे कि वो कहानी है कि ये पॉपिज्म का जो तसव्वुर है आप सुनते हैं, पॉप वन, पॉप टू, पॉप थ्री, फिर क्रिश्चियंस को खूब मौका मिला कि अब हम जो मर्जी करें। पहले तो सांझे थे, अगर क्रिश्चियंस कोई अपने दीन में कमी पेशी करते तो ज्यूस ने तनकीद करनी थी, बात वाज़े, तो वो नहीं कर सकते थे। अब जब दोनों थोड़े से आपस में खटे पटे, इनके उलमा का जो दिल चाहा इन्होंने अपनी किताब में लिख दिया, उनके उलमा का जो दिल चाहा कर दिया, नतीजा क्या हुआ कि ये आपस में बहुत ज्यादा लड़े मरे और एक दूसरे के इस हद तक दुश्मन थे, क्या जिसको आप बैतुल मकदस कहते हैं ना, आपको पता है कि एक ऐसा दौर था कि जिसमें क्रिश्चियंस का इन पर गलबा था। हिस्ट्री अगर आप बैतुल मकदस की पढ़ें, इस पे बुक्स भी हैं इंशाल्लाह, जहाँ मौका मिला आपको उनके नाम भी रेकमेंड कर दूंगी, कि एक आज के दौर में किसका कब्जा है, जी उसका, उमर फारूक के दौर में किसको मिला, मुसलमानों को, उससे पहले के दौर में जब हजरत सुलेमान के दौर के बाद का जो बीच का दौर आया, क्रिश्चियंस का गलबा रहा, आज क्रिश्चियंस का नहीं है, क्रिश्चियंस, फिर मुस्लिम्स को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों दोबारा वो फतह हुआ, और इस सिरे में मुसलमान थे, और जिस दौर में क्रिश्चियंस का बैतुल मकदस पे कब्जा था, तो उन्होंने शर्त रखी हुई थी कि कोई जीव बैतुल मकदस में दाखिल नहीं हो सकता। अब ये बातें आप कहेंगे उनकी हिस्ट्री सुन रहे हैं, आपको इसमें आज मुसलमानों का हाल नहीं दिख रहा? जिस मस्जिद पे जिसकी जारादारी होगी, दूसरा उधर एक पर नहीं मार सकता। जो जिसकी क्लास शुरू होगी वो कहता है यहाँ आप कोई दूसरा जा ही नहीं सकता, कर लो जो करना है, हमारा होता है, और कोई दिन रख दो, कहते हैं नहीं इधर ये होता है। यानी सेम उन्हीं कदमों पे फुट ब फुट मुसलमान आज जा रहे हैं जिस पे ये ज्यूज एंड क्रिश्चियन है। मैं आपको आज बिल्कुल इसकी सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ कि आज आप उम्मत मुस्लिमा को मोस्टली चार पांच नामों में बटा हुआ देखते हैं ना, जिसमें देवबंदी हैं, ब्रेलवी हैं, वहाबी हैं, शिया सुन्नी को तो एक तरफ कर दें, यानी मैं मुस्लिम ग्रोहों के अंदर ही बात कर रही हूँ अगर, तो आप देखिए कि जिस तरह ये एक फिरका दूसरे फिरके पे कीचड़ उछालता है ना, सेम यहूदी और नसरानी ये दो फिरके हैं, ये एक दूसरे पे इट पटक्का लगा रहता था, इन्होंने ये किया, वो कहते हमारे उलमा ने, वो कहते तुम खराब हो, वो कहते तुम खराब हो, कि जिस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अनहो को बैतुल मकदस की चाबियां दी गई थी फतह की सूरत में, तो उस वक्त के वहां के बैतुल मकदस के जो प्रीस्ट थे उन्होंने एक शर्त दी थी कि आपको हम चाबी सिर्फ इस शर्त पे देंगे कि बैतुल मकदस के अंदर कोई यहूदी नहीं आ सकेगा। इतना आपस में बैर था, तभी तो अल्लाह ताला उनकी ये बातें बता रहे हैं कि कालत यहूद लैसत नसारा अला शयइन, ये असल में इनकी मजहबी लड़ाइयाँ हैं, जंगे हैं, जिसको आज भी आप देखें तो उम्मत मुस्लिमा इसमें किसी से कोई पीछे नहीं दिखती। और इतना ज़्यादा इनका काबू था कि जब ज्यूस को इधर मौका मिलता था तो ये क्रिश्चियंस पे जुल्म करते थे, हत्ता कि आपको पता है कि जब एक मजहब वाले का कब्जा हुआ इस बैतुल मकदस पे, तो दूसरे मजहब वालों की किताबें जलाई गईं, इन्होंने तौरात के सफ़ों को खराब किया, जलाया, गंदगी में फिरवाया गया, इस तरह के हालात। और जब यहूद को मौका मिला आज वो भी वही करेंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि असल सबक में वजह आ जाए कि आगे के जब दीन जो है इस तरह से एक अखाड़ा बन जाता है, और उसकी वजह क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके साथ साथ आगे चलते जाएं ताकि पूरे सबक को आप एक स्ट्रेच में समझें कि इस तरह की बातें कब होती हैं, जब लोग असल दीन की रूह से ख़त्म हो जाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि नजरान का वक्त आया था, वो अपनी बात कर रहे थे तो यहूद ने भी अपनी बात शुरू कर दी। आप इसको यूं ही कह लें, मिसाल ले लेते हैं कि ये मस्जिद नबवी है और अल्लाह के नबी के पास एक ग्रोह आया है, दूसरा है, तो अल्लाह के नबी उनसे पूछे अच्छा ये बताओ कि भला नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो आप नसारा को मुसलमानों का एक फिरका समझ लें, तो वो बताएंगे यूं करो, ये करो, रफुल यदैन करो, हाथ सीने पे बांधो, पाँव दोनों खुले रखें। अब ये बात सुनने में दूसरा ग्रोह जो ना वो एकदम गुस्से में आ जाए, नहीं नहीं ये नहीं ये गलत बताते हैं, अच्छा भी तुम बताओ कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, वो कहेगा नहीं रफुल जान नहीं करना, पाँव नहीं जोड़ना। नतीजा क्या हुआ कि इन दोनों में तू तू मैं हो गई, लड़ाई हो गई, मस्जिद नबी अल्लाह का नबी मौजूद है और ये दो फिरके वाले एक दूसरे से लड़ने लग गए, इस हद में कि आयतें नाजिल हो गई कि आप इनकी बातों पर परेशान ना हो, इनकी तो बातें ही है। और होता भी यही है, याद रखे कि दीन बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा तो उसमें रूहानियत होगी, दिल पे उतरेगा, आपका दिल बदलेगा, और जब इसमें इंसानों के अफकार उनकी सोचें आ जाती हैं, जब इसको प्यूट किया जाता है, तो नुकसान क्या होता है कि फिर उससे कुछ नहीं मिलता। आप कहेंगे कि फिर आज तो हमें ये बड़े कॉमन दिखते हैं, तो एक मुफस्सिर अमीन हसन इस्लाही वो कहते हैं कि इस्लाम की मुखालफत ये ओनली वो चीज़ है जो यहूद और नसारा को इकट्ठा करती है, यानी इनमें इत्तेहाद का, इनमें बोंड का जो नुक्ता है ना, जो च्विंगम है, वो इस्लाम दुश्मनी है। जहां इस्लाम को नुकसान देना होता है ये सब एक हो जाते हैं। सियासी इलहाक आपने सुने ही होंगे, कल एक हिजब इख्तलाफ में होता है तो दूसरा हिजब इक्तदार में होता है, दोनों लड़ते हैं, वो उस पर कीचड़ उछालता है उसमें, जब दोनों को हुकूमत मिल जाती है कभी आप एक दूसरे के खिलाफ उनके बयान ही नहीं सुनेंगे, वो एक ही घाट पे बकरी और शेर की तरह बैठे हैं, क्यों कि तुम ये बन के करो तो मैं ये बन के अपने अजायम पूरे करता हूँ, बिल्कुल ये सियासी इलहाक होता है। तो जब इस्लाम को निकाल दें ये आपस में लड़ने लग जाते हैं, और एक दूसरे को देखिए कितने मान के साथ जन्नती और निजात याफ्ता फिरका कह रहे हैं। यहाँ एक और बात भी तो दिख रही है ना कि जब दीन पे कुछ लोगों की जारादारी हो जाती है ना, तो फिर वो उस दीन को निजात का जरिया समझते हुए अपने ऊपर इस तरह से बातें ले लेते हैं कि हमारे सिवा तो किसी को जन्नत मिलेगी नहीं, गोया के हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ अगर तुमको जन्नत चाहिए, पीछे भी पढ़ लिया ना लन यदखुल अलजन्नत, तो गोया के लोग इस तरह की बातें करके दीन को टुकड़ों में डाल देते हैं। कज़ालिक काल अल्लज़ीना ला यालमूनल किताब, ये अहले किताब इस तरह की बातें क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास भी क्या था? आप अगर थोड़ा सा अपने जहन को अब खुला हुआ महसूस कर रहे हैं तो यकीनन कम से कम इतनी आयतों की तफसीर जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं आपको ये तो पता चल गया कि ये जो तीन नाम है ना, अहले मक्का और यहूद और नसारा, ये ऐसे ही हैं कि जैसे तीन फिरके हैं और हर बंदे ने अपनी खुशी का कोई जरिया बनाया हुआ है। कुछ कहते हैं कि हम सियासत की बात बहुत करते हैं, हमें अपने मुल्क का बड़ा दर्द है, हम मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, है बात बहुत अच्छी, लेकिन उसको फॉलोअप कैसे करना है? असल मसला यह है, कोई भी तहरीक जब शुरू होती है ना तो कॉज बहुत अच्छा होता है। अगर इस वक्त हमारे अपने ही मुल्कों में जो मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स हैं जो इस्लाम के नाम पे प्रेजेंट करते हैं, सियासी मैदान में ऊपर उभरते हैं, तो आप देखिए कि उसमें कुछ लोग सियासत की बात करते हैं, कुछ लोग जो हैं तबलीग की बात बहुत करते हैं, और कुछ लोग जिहाद के, वो कहते हैं हम जिहादी ग्रुप हैं, वो कहते हैं हम सियासी ग्रुप हैं, वो कहते हैं हम तबलीगी ग्रुप हैं। अब मिसाल है, जिस दिन ये सोच शुरू हुई इनके किसी भी बुजुर्ग और इनके रहनुमा की रोशनी में, ये एक्सीलेंट सोच थी। हर बंदे का एक मिजाज होता है, कोई घरेलू मामलात पे बहुत बात करता है तो कोई जो है नमाज रोजे पे बहुत बात करता है, ये दीन का हुसन है। मुख्तलिफ उलमाए कराम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खूबियाँ दी होती हैं। नुकसान कहाँ होता है कि बाद में जो उन्हीं की जमातों और ग्रोहों को चलाने वाले लोग हैं वो उस अपने छोटे से ग्रोह को जज़कुल समझ लेते हैं। मिसाल है कि किसी को लगा कि पाकिस्तान में इस्लाम आना चाहिए, उन्होंने कहा कि हम एक इस्लामी जमात बनाते हैं, एक्सीलेंट वंडरफुल, इससे अच्छी सोच क्या होगी, बेहतरीन बात है। उन्होंने अपने कारकुनान को, अपने लोगों को ट्रेनिंग दी। मेरे नज़रों से एक दो किताबें ऐसी गुजरी, यकीन करें बेहतरीन किताबें, उनके लीडर्स की लिखी हुई किताबें जिसमें वो बार बार ये बात लिखते हैं अपने लोगों को जिनको वो अपने ग्रोह के लोग कहते हैं कि देखो जब भी तुमने इस काम के लिए उठना है अल्लाह के लिए उठना है, अपने नाम के लिए नहीं उठना, जब भी तुमने दीन का काम कहीं करना है उसको बिल्कुल ओपन माइंडेड होके करना है। यानी वही बातें जब हम कुरान सुन्नत में पढ़ते हैं। मैंने मोटी मोटी एक दो चीज़ें देखी, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा कि उनके उस्ताद की तालीमात में गलती थी, लेकिन आज जब आप उन गिरोहों को प्रैक्टिकली दुनिया में फैला हुआ देखते हैं तो मशहूर ही है कि ये अपने गिरोह से बाहर जाते नहीं, ये अपने गिरोह से जुड़े हुए हैं, ये उनके अलावा किताबें किसी की नहीं पढ़ते, ये दिस एंड दैट, ये उनको प्रमोट करते, ये नुकसान की बात है। अल्लाह ताला ने यहाँ इसी का सदबाब कर दिया कि ये लोग आपस में इस तरह से कट पड़ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये लोग पूरे दिन को नहीं समझे। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर ये स्क्रीन है ना, मैं आपके सामने इधर कोई तस्वीर खोलूं और उसको इतना जूम इन जूम आउट करती जाऊं कि बड़ी से बड़ी होती जाए और कहीं उसका पाँव दिख जाए, आपसे पूछूं ये क्या है तो आप कहेंगे कि ये पाँव है, लेकिन मैं कहूंगी कि नहीं ये पूरा इंसान है। हुआ क्या नुकसान? थी वो तस्वीर पूरी, उसको इतना बड़ा कर दिया कि पूरी स्क्रीन पे सिर्फ पाँव आ गया। नुकसान क्या होगा कि आप इस सिर्फ पाँव को पूरा इंसान समझेंगे। इसमें एक बड़ी मशहूर कहावत है इंग्लिश की, स्टोरी है कि नौ अंधे थे तो वो किसी जगह गए, उनको पता चला हाथी आया है, हाथी देखने गए। अब वो अंधे से बेचारे, उन्होंने जब टटोला, किसी का हाथ हाथी की दुम पे पड़ा, दूसरे का हाथ जो था हाथी के पेट पे पड़ा, तीसरे का हाथ हाथी की दुम पे पड़ा, किसी का कानों पे पड़ा, वापस आ गए। जब बैठे सुनाए कहा सुनाओ भाई हाथी कैसा होता है, सबने देखा नहीं महसूस किया। एक ने कहा हाथी वो तो बिल्कुल एक लंबी रस्सी की तरह होता है, दूसरे से पूछा गया, उसने कहा नहीं हाथी जो है वो ढोल की तरह होता है, तीसरे ने कहा नहीं हाथी जो है ना वो पंखे की तरह होता है। अब क्या था, वो सारे दे वर पार्शली राइट बट ओवरऑल दे वर रॉन्ग। जिसका पेट पे हाथ पड़ा वो ढोल कह गया, ठीक है वो रो रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन उसकी गलती क्या थी, उन्होंने पूरे हाथी को नहीं देखा। आज उम्मते मुस्लिमा जो टूटी पड़ी है ना उसकी वजह यह है, किसी ने इस्लाम के जिहाद को पूरा इस्लाम कह दिया, किसी ने इस्लाम की तबलीग को पूरा दीन कह दिया, और किसी ने सिर्फ इस्लाम के नाम पे सियासी निज़ाम को लिया, और कुछ ने तो खुला ही छोड़ दिया। तो असल बात यह है कि जब दीन को आप अपनी असल शक्ल पे रखेंगे तो यकीन करें कि लोग इंजॉय करेंगे, स्वीट एंड सावर, मीठा खट्टा टेस्टी क्रंची खाना अच्छा कौन सा होता है, बेहतरीन टेस्ट हो। मिसाल है कि आप चाइनीज़ खाना बनाते हैं, शौचलिक की मिसाल ले लें, उसमें चीनी भी डलती है, उसमें नमक भी डलता है, उसमें खटास भी डलती है, जिसको पकाना आता है उसको पता होगा राइट। आप सिर्फ चीनी चीनी डाल दें तो वो स्वीट डिश बन जाएगी, नमक ज़्यादा कर देंगे तो कड़वा बन जाएगा, खट्टा ज़्यादा कर दें तो वो दांत को करेगा, करो क्या माइल्ड टेस्ट, सबको बैलेंस करो। ये है आज के दौर का मसला। ये जो इतने गिरोह वजूद में आते हैं उसकी वजह यह है कि एग्जेजुरेशन हो जाती है एक चीज़ जिसको वो सही समझते हैं। कीजिए, बिस्मिल्लाह करें, आपको जिहाद के हदीसों ने मोटिवेशन दिया, गो हैंड लोगों को जिहाद की बातें बताएं, पूरा नुक्ता नज़र बताएं, लेकिन साथ उनको बाकी दीन की भी बात बताएं, राइट? आपको तबलीग अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ कि शायद अगर नाम रखना मसनून होता तो मैं अपने दिल से कहती हूँ कि मैं अपने क्लास, अपने स्कूल ऑफ थॉट का नाम तबलीगी रखती, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का मकसद ही तबलीग है। नुकसान क्या है? इस वक्त क्यों कामयाबी नहीं होती कि तबलीग पे रुक गए, और वो भी सिर्फ मुस्लिम की तबलीग पे, नॉन मुस्लिम पे नहीं। ये मैं किसी तबलीगी ग्रुप पे बात नहीं कर रही, सिर्फ मिसाल आपको दे रही हूँ। और कह दिया कि बस अभी सिर्फ तबलीग करेंगे, अभी जिहाद का वक्त नहीं आया, अभी हम मक्की दौर में, अभी हम सिर्फ अपने मुस्लिम्स को दावत देंगे, अभी हम नॉन मुस्लिम तक बात नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा एक नुकसान क्या हुआ कि तालीम छोड़ी, अपने लोगों को तालीम नहीं दी कुरान और सुन्नत की, तबलीग पे लगा दिया, और तबलीग के नाम पे चंद किताबें जो बहुत खूबसूरत लोगों ने नीयत से लिखी वो दे दी, और लोग जहाँ बैठते हैं उस किताब को खोल के पढ़ते हैं और कहते हैं इसका विर्द करो, ये पढ़ो सुनो करो, और चलो अब तबलीग पे जाते हैं। हर वो हदीस उसमें जमा हुई जिसमें तबलीग की अहमियत थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे कामों को छोड़ नहीं सकते। इतना ज़्यादा बाउंडेड किस्म का फिर गिरोह वजूद में आ गया कि जो अपनी नमाज, रोज़ा, हज इसी पे रहते हैं। हमारे अपने साथी ऐसी कई बातें करते हैं, तो दिली तौर पे अगर मैं देखूँ ना तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जितने भी गिरोह मशहूर हैं, मेरा अपना दिल तबलीगी जमात से झुकता है, क्योंकि उनका मिशन वही है जो कुरान और सुन्नत में उम्मत मुस्लिमा का दिया गया। 110% मैं कह सकती हूँ वही मिशन है, तरीक़ाकार फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ ये बातें कर करा के अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके दरमियान फैसले करूँगा, वो कब करेगा? क़यामत के दिन। क्या दुनिया में ये फैसले नहीं होंगे? हैं, लोग मानेंगे नहीं अल्लाह के फैसले को। या नोट करें, कुछ लोग कहते हैं अच्छा कोई पता नहीं जी कौन ठीक है कौन गलत है, तुम किसी को गलत क्यों कहो? हम नहीं गलत कहते, लेकिन कुरान सुन्नत का इल्म आपको बता देता है कि किसकी स्कूल ऑफ थॉट ठीक है। हमें तो पता है दुनिया में कुरान सुन्नत जिसने पढ़ा जिसके पास है, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल एक किस्म की धमकी है, आज नहीं मानते ना बेटा अदालत में जाके मानोगे, ये मुराद है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके इख्तलाफात का हल होगा। अब ये तो था झगड़ा, मुख्तलिफ दीनी गिरोहों के झगड़े से नुकसान क्या हुआ कि पहली बात, यानी अगर आप देखें कि इन दो आयतों के बीच में हमारे लिए क्या बात है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हकीकी इल्म वही होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, और अल्लाह ताला ही फैसले करता है। कोई शख्स तासुब और हठ धर्मी पर रह के इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकता। जब तक आप अपना दिल नहीं खोलेंगे ना, आप दीन की असल रूह लोगों को नहीं देंगे। और इनका जो यहूद और नसारा का यहाँ तذکرہ उम्मत मुस्लिमा के बिगड़े हुए ग्रोहों के नाते से किया गया, तो आप देखें कि इसकी बुनियाद नंबर एक ज़िद, तासुब और जहालत। हर बंदा अपने ऊपर है, और जब ये चीज़ें किसी भी उम्मत में आ जाती हैं, ख़ास तौर पे वो उम्मत जिसको अल्लाह ताला ने बहुत चुना हो, तो उसका नुकसान क्या है, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, ये अगली आयत में हम देखेंगे कि जब लोग इस तरह के झगड़ों में पड़ जाते हैं तो नुकसान क्या होता है, क्या लोगों पर मस्जिदों के दरवाजे बंद हो जाते हैं।